તારીખ 8-8-1990 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 375 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું સોનગઢમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 5
માતાજી કા મંગળ દિન તુજી માતાજી કે બારે મેં હમ સારે વિશ્વ પર નજર કરતે હૈ विभूति नजर आती है विश्व में सांप्रत इस काल में ऐसे व्यक्ति
ऐसे विरल व्यक्ति दूसरी देखने में तो नहीं आते सौभाग्य था कि प्रत्यक्ष परिचय से हमें उनका लाभ मिलता था ऐसी एक विश्व की बेजोड़ विभूति के जन्म लिए हैं उनके भक्ति का ये अवसर है हमारे लिए उनके वचनामृत का स्वाध्याय करना बहुमान से स्वाध्याय करना ये भक्ति का अवयव है भक्ति का एक अंश है इस भावना को लेकर हम स्वाध्याय करते हैं प्रत्यक्ष सत्पुरुष के विषय में उपाधुदेव श्रीमद राज सिंह जी ने कहने में कोई कसर नहीं रखी अगर हमें कुछ इस विषय में समझना हो के वचनामृत से समझना इनकी बराबरी में दूसरों की भाषा का प्रयोग भी नहीं देखने में आता है ऐसा इस विषय को श्रीमद जी ने खोला है हमें ये बात लागू पड़ती है कि हमने कहां तक ज्ञानी पुरुष की पहचान की और कहां तक हमने इस पहचान करके बहुमान किया कितना बहुमान हमारे हृदय में हमारे ज्ञान में हमारे समझ में आया ये विचारणीय विषय है महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है इस वचनामृत में चैतन्य तत्वज्ञानी स्वरूप की पहचान का विषय चला है स्वरूप की अनुभूति का और सम्यक दर्शन का कोई खास कारण है कि जिसके बिना अनुभव नहीं हो सकता है ये महत्वपूर्ण कोई कारण है कोई पहचान है श्रीमद जी ने तो 751 नंबर के पत्र में इसको कारण देखकर, नियमबद्ध कारण देखकर, कि जिस कारण के साथ कार्य प्रतिबद्ध है, ऐसा कारण देखकर उसको एक न्याय से संकित बोल दिया है। संकित के तीन भेद हैं इस पत्र में। प्रत्यक्ष सत्पुरुष की पहचान होकर के, आप्त पुरुष कह करके, वहां आप्त ऐसा शब्द लगाया है पत्र में, उसकी आज्ञा रुचि रूप सम्यक, उसका विकल्प वही आज्ञा, उसका संकेत वही आज्ञा। आज्ञा तो आज्ञा है ही, लेकिन यहां तक ऐसा आप्त पुरुष की आज्ञा रूप रुचि, उसको संकेत कहा है। दूसरा कहा है ये पहचान को संकेत कहा है, कि जो स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति रूप है, वहां ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति, ये पहचान का विषय जो समय सार के परिशिष्ट में भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव ने निरूपित किया, कि ज्ञान मात्रस्य स्वसंवेदन प्रसिद्धत्वात्, ज्ञान मात्र को मैंने आत्मा को स्वसंवेदन से प्रसिद्धि कह, इसका यही अनुवाद है कि स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति, प्रतीति मैंने विश्वास। और तीसरा लिया परमार्थ संकेत, परमार्थ संकेत मैंने कि जो निर्विकल्प स्वानुभूति के काल में आत्म प्रतीति अनुभव पूर्वक होती है, उसी को कहा परमार्थ संकेत दर्शन। स्पष्टीकरण कर दिया कि एक दूसरे के कारण होने से हमें उसको भी संकेत कहते हैं, और ऐसा कहना ये कहने योग्य है, सत्कार करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, आदर करने योग्य है, इतने शब्द डाले। तो ये दूसरा नंबर का जो संकेत है इस विषय में कुछ माता जी का भी बोल चलता है, बहुत सुंदर बात है इसमें। इस चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए, हम धर्म धर्म के क्षेत्र में आए, धार्मिक कुछ न कुछ क्रियाएं भी करते हैं, हमारा विचार करें तो हम क्या क्या करते हैं, कि हम देव दर्शन करते हैं, जिनेन्द्र का दर्शन करते हैं, शुद्ध स्मरण करते हैं, कुछ परमिष्ठ आदि का स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, दयादान आदि हमारी शक्ति अनुसार सब कुछ जो भी करते हैं, ये सभी प्रवृत्ति होने के बावजूद भी कर्तव्य क्या चीज है, इस बात पर यहां ध्यान खींचा है कि कर्तव्य ये है कि हमें हमारे चैतन्य तत्व की पहचान करनी चाहिए। इस सब करते हुए भी अगर हम हमारे चैतन्य तत्व की पहचान नहीं करते तो ये करने में सब अनंत बार कर चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में ये सब चीज हो जाएगी। क्या अनंत काल में हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, अनंत काल में हमने जिनेन्द्र दर्शन नहीं किया, क्या हमने पूजा भक्ति नहीं की, क्या दया दान यात्रा आदि नहीं किया, जब तक आदि नहीं किया, क्या नियम नियम संयम आप प्रियो सब बात देने। यहां जो विषय है ये चैतन्य तत्व की पहचान करना, ये बात तो लक्ष्य में रहनी चाहिए कि हमें हमारे स्वरूप की पहचान हुए बिना हम जो भाव भ्रमण का अभाव रूप जिस सम्यक दर्शन और स्वानुभव तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण से इस विषय पर इस वचनामृत में बहुत वजन दिया है। इसी कारण से चैतन्य को पहचानने का अभ्यास करना, अभ्यास शब्द है प्रयत्न के अर्थ में, प्रयास के अर्थ में। चैतन्य को पहचानने का अभ्यास करना मैंने प्रयत्न करना, प्रयत्न के जगह अभ्यास शब्द का प्रयोग इसलिए है कि अभ्यास मैंने बार बार प्रयत्न करना, ऐसा अभिप्राय है। कभी करें कभी नहीं करें, आज किया हम कुछ पहचान करने का प्रयास, फिर कुछ महीनाओं के बाद करें, कुछ दिनों के बाद करें, ऐसा नहीं। क्षण क्षण हो सके अच्छी बात है, वरना प्रसंगे प्रसंगे तो करना ही चाहिए। प्रसंग मैंने उदय, सभी उदय में हमारा एक ख्याल रहना चाहिए कि हमें हमारा स्वरूप को पहचान करना है। कैसे पहचान करना है इसका जो कार्य पद्धति है, ये तो नीचे पूज्य माता जी के वचनामृत से ही हम विचार करेंगे, लेकिन यहाँ इस सिद्धांत को स्थापित किया है कि पहचान कुछ पहचान करने के अभ्यास से पहचान होता है, यानी बार बार पहचान करने का प्रयास करने से पहचान होती है, इसलिए पहचानने का अभ्यास करना। और ऐसा प्रयत्न में ऐसा अभ्यास में भेद ज्ञान का अभ्यास करना, ऐसा कहा। मैंने भेद ज्ञान का विचार करना ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि भेद ज्ञान का विचार करना, भेद ज्ञान का अभ्यास करना, ऐसा कहा। दोनों में अंतर है। शरीर और आत्मा जुदा है ऐसा विचार करते हैं, शरीर और आत्मा जुदा है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है और राधा जी विभाव भाव जुदे हैं, ऐसा भी हम विचार करते हैं, लेकिन अभ्यास करना प्रयत्न करना ये विचार के साथ साथ विचार से आगे की एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यहां अपना अभ्यास कहते हैं। विचार की भूमिका में भले ही यह अभ्यास होता है, फिर भी अकेला विचार होवे और अभ्यास नहीं होवे, ऐसा हो सकता है, ऐसा करीब करीब होता भी है, इसलिए कहते हैं कि विचार करना ऐसी बात नहीं है, अभ्यास करना ऐसी बात है, प्रयत्न करना ऐसी बात है। मार्ग ही पुरुषार्थ प्रधान है, यहां से ये बात खुलती है यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि यह मार्ग ही पुरुषार्थ प्रधान है। यहाँ से लेकर के वेद ज्ञान का पुरुषार्थ से लेकर ही आखिर तक जहां मोक्ष मार्ग का अंतिम चरण हो, चरण मैंने आचरण, वहां तक पुरुषार्थ प्रधान मार्ग है। इसलिए कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जितने को भी होता है उनकी विकास की परिस्थिति पुरुषार्थ के दौर से पुरुषार्थ के दौरान ही आगे बढ़ती है। जितना पुरुषार्थ तीव्र होता है उतना ही इसका फल स्वरूप जो मोक्ष है वो नजदीक होता है, निकट होता है, और जितना पुरुषार्थ मंद है उतनी देर लगती है। इसलिए अभ्यास में पुरुषार्थ प्रयास ये बात यहां से शुरू से ही चालू होती है। वेद ज्ञान का अभ्यास करना इसे कहते हैं। अभ्यास करना मतलब ये है कि वेद ज्ञान का विचार हमें आता है साथ ही साथ इसका प्रयोग भी चले, तो प्रयोग पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकता, प्रयास के बिना प्रयोग नहीं हो सकता, प्रयोग और पुरुषार्थ अविनाभावी रहता है। गुरुदेव के वचनामृत में 304 नंबर का वचनामृत है परमादुसार, इसमें ये बात आई है कि मुमुक्षु जीव को प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग का पुरुषार्थ करना चाहिए। सुमनी पंचेंद्रियों होने से मनुष्य का विचार तो चलते ही रहेगा अपने रुचि के अनुकूल। जिस जीव को जैसी रुचि होती है उसको इस प्रकार की विचारधारा सहज सहज चलती है, तो विचार तो चलेगा। हमें ये निर्णय किया बुद्धि से इतना निर्णय किया कि धर्म करने से सुख है या हमारा भव भ्रमण का नाश हो सकता है, और धर्म करने में तत्व ज्ञान ही इसका साधन है, तो हम तत्व ज्ञान के बाह्य साधन जुटाएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसमें भी मानसिक उपलब्धि होने से विचार करना ही कोई बड़ी बात नहीं है। इतना निर्णय के बाद इस लाइन के विचार चालू हो जाएगा, चालू होता रहेगा, लेकिन विचार कर करके क्या करेंगे? जैसे कि सुगानी जी ने कहा, थक जाओगे। प्रयत्न एक ऐसी चीज है कि इसमें कुछ समीपता आती है, जिस स्वभाव में बेहद शांति भरी है, जो स्वभाव अनंत शांति का एक निधि है, उसके कोई समीपता तो आती है, तो पुरुषार्थ से आती है। इसलिए शुरू से ही सत्पुरुष के वचन पुरुषार्थ प्रेरक ही रहा है, रहते हैं। पुरुषार्थ नहीं हो ऐसी बात कुछ पुरुष के वचन में नहीं हो सकती, और ये पुरुषार्थ से ही कुछ समीपता आती है या कुछ प्राप्ति आगे जाकर के होती है, स्वरूप की उपलब्धि, तो ये पुरुषार्थ का ही फल है। इसलिए वेद ज्ञान का पुरुषार्थ करना ऐसा कहने में ही कराया है। वेद ज्ञान का पुरुषार्थ पहचान करने के लिए हमें करना है ये बात है, विचार तो करेंगे ही, लेकिन विचार से आगे एक कदम और भी हमें चलना है कि जिसके फल में हमें सम्यक दर्शन और स्वानुभव तक प्राप्ति होवे, उपलब्धि होवे। ये भेद ज्ञान का अभ्यास करना यही कर्तव्य है हमारी मुमुक्षुकी भूमिका का। ये कर्तव्य शब्द यहां लगाया है कि यही करने योग्य है। ये हमारे हमको ये यहां से उपदेश मिलता है, ये देशना मिली है, हमारे कर्तव्य को समझाया है कि तुम्हें क्या करना है। एक मुमुक्षु की भूमिका में आए हुए किसी भी जीव को यही कर्तव्य है, ऐसा कहा। वह अभ्यास करते करते वेद ज्ञान का अभ्यास, वह मैंने ऐसे वेद ज्ञान का अभ्यास करते करते आत्मा की रागा जिससे भिन्नता भाषित हो तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए। देखिए यहां ये विषय और स्पष्ट होता है इस वचन से कि वेद ज्ञान का बार बार अभ्यास करेंगे तो ऐसे अभ्यास करते करते आत्मा की रागादि से भिन्नता भाषित हो। तो किस स्टेज में बात आई कि संसार के जीव को राग तो सहज रूप से चलता ही रहता है, पर ज्ञान भी परिणमित होता ही रहता है। एक जगह स्वभाव है, एक जगह विभाव है, इसलिए ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है, ऐसा परिशिष्ट में चर्चा चली समय सार के। तो रागादि से भिन्नता होती है और कोई बात नहीं है। देखिए नो कर्म की बात नहीं ली, कर्म की बात नहीं, वैसे कर्म तो दिखने में भी नहीं आता छद्मस्त जीव को। रागादि से भिन्नता ये भाषित हो, रागादि से भिन्नता विचार में तो आती है, लेकिन भाषित होना और विचार में आना दो बात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदी है। विचार में तो गुरुदेव की कृपा से हमें इतनी ये बात घुटी है, बार बार सुनी है, बार बार पढ़ी है, ठीक है। देह से भी आत्मा भिन्न है, रागादि से भी आत्मा भिन्न है, बहुत आसानी से इस बात को हम सम्मत करते हैं आज, ये गुरुदेव की कृपा है। संप्रदाय में तो इतने सम्मत करने तक भी लोगों की मानसिक परिस्थिति नहीं है, लेकिन हमें कोई संप्रदाय से लेना देना नहीं है। हमें तो हमारा विचार करना है कि जब हम ये बात आसानी से विचारते हैं, सम्मत करते हैं, तो हमको भाषित क्यों नहीं होती। जब विचार में हमें कोई दखल नहीं होती, यानी निषेध नहीं आता कि राग तो आत्मा करता है, पर जब राग आत्मा करता है तो रागादि से भिन्न कैसे, ऐसा हमने हमको विचार नहीं आता है, ऐसा विरोध नहीं उठता है, नकार नहीं आता है, तर्क नहीं उठता है। इस बात को हमने गुरुदेव की कृपा से सम्मत करी कि बात तो ठीक है, राग एक रोग है जीव का, स्वभाव नहीं है, इसलिए भिन्न है। न्याय से, आगम से, गुरुदेव के वचन से, तर्क से, अनुमान से, युक्ति से ये बात विचार से सम्मत होती है, किंतु भाषित नहीं होती है, ऐसा क्या? राग हो रहा है और ज्ञान से आत्मा की भी उपस्थिति है, जानने वाला ऐसा आत्मा की उपस्थिति है, मौजूदगी है, तो रागादि से हमें भिन्नता लगती क्यों नहीं है? भाषित होना मैंने लगना, लगती क्यों नहीं है? भाषित क्यों नहीं होती है? ये स्थल है कि जहां इसकी गहराई में जाना हमारे लिए आवश्यक है, इस स्थल की गहराई में हमें जाना चाहिए। वरना तो ऐसा विचार हमने कई बार कर लिया है और कई साल गुजर गई इस विचार को सम्मत करने के बाद भी, लेकिन हमें जो चाहिए, जहां हमें पहुंचना है, वहां हम पहुंचे नहीं है। इसलिए कुछ माता जी कहते हैं कि आत्मा की रागादि से भिन्नता भाषित हो तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए, मैंने अनुभव हो जाए। प्राप्त होना, मैंने अनुभव हुए उसको प्राप्ति कहते हैं, है तो सही, लेकिन अनुभव नहीं है वहां तक प्राप्ति नहीं कही जाती, और अनुभव में ही प्राप्ति कही जाती है। इसलिए स्वरूप प्राप्ति के लिए या स्वानुभव के लिए रागादि से भिन्नता भाषित हो तो अनुभव होता है, भिन्नता भाषित न होवे तो विचार से सम्मत करने के बाद एक सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय फिर आगे जाके टिकने वाली नहीं है। किसी को भवंत भाव के अंत तक टिकती है भवांतर में, फिर असंग तत्व की दृष्टि नहीं होने से, उपलब्धि नहीं होने से पुण्य या पाप के फल स्वरूप किसी भी गति में जाता है, वहां इस विचार की भी परिस्थिति नहीं रहती। देवलोक में जाए तो वहां भोगादि में लपेट हो जाता है, और दूसरी गति में जाता है तो वहां तो बहुत परिस्थिति खराब है। तो इसलिए ये स्थिति पूरी होवे इसके पहले पहले ये पुरुषार्थ की प्रेरणा है कि हमारी आयु अनिश्चित है, चाहे शरीर कितना भी अच्छा दिखे, तंदुरुस्त दिखे, फिर भी इसका विश्वास करने योग्य तो है ही नहीं। और ये तो रोज सुनते हैं, ये बात तो रोज सुनने में आती है, लेकिन उसका कुछ लगना चाहिए तो तेजी आ सकती है, कुछ लगे नहीं सुनने के बाद तो प्रयास में तेजी नहीं आती, प्रयत्न का उपार नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि अभ्यास करते करते, यही एक इसकी विधि है, प्रयत्न का अभ्यास, प्रयोग का अभ्यास चालू रहे तो भिन्नता भाषित होगी, भिन्नता भाषित होगी तो स्वरूप की प्राप्ति होगी। ये तो सीधी सीधी एक सीढ़ी के पीछे दूसरी सीढ़ी है, ऐसी बात बता दी है। आत्मा चैतन्य तत्व है, ज्ञायक स्वरूप है, उसे पहचानना चाहिए। फिर से कहते हैं तो प्रस्तुत विषय ये चल रहा है, जो भी आगे बात कही इसमें जो विषय चल रहा है वो चल रहा है कि आत्मा जो चैतन्य तत्व है, ज्ञान मात्र जिसको कह करके समय सार में पुकारा आचार्य भगवंत ने, चैतन्य तत्व प्रयोग करना है इस बात को अभी और छानबीन से स्पष्ट करते हैं। जीव को ऐसा भ्रम है कि पर कर सकता हूं, ये तो बात समझने में इसलिए आसान है कि हमारे चलते हुए परिणाम का हम अवलोकन करें, चलते हुए परिणाम का अनुभव को कि हम तलाश करें, तपास करें, तो पता चल जाता है कि ये वचनामृत में जो बात है वो हमारे अनुभव की कही हुई है। कि जीव को ऐसा भ्रम है कि मैं पर्द में पर्दृढ़ता कर सकता हूँ। जैसे भाषा चलती है वैसे तो स्वयं ही चलती है, लेकिन भ्रम से ऐसा लगे कि मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, इतना ही नहीं मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसा भ्रम होने से मैं अच्छा बोलता हूँ कि आये बिना रहने वाला, तो अच्छा बोलता हूँ ऐसा आया तो दूसरों से अच्छा लगे, दूसरों से अच्छा बोलता हूँ ऐसा योजना रहेगा नहीं। मेरे कर्तृत्व के साथ इस ब्रह्म के साथ ब्रह्म को ज्ञान नहीं होता, सफाई चालू हो जाती है मनुष्य मंदिर सीधे मान कर नहीं आ रहे। अहंकार करना यही एक अभिमान है, और फिर इस अभिमान में अच्छाई हुई तो और तीव्र रस आया, और दूसरों का इसमें लक्ष्य हुआ तो और तीव्रता आ गई। ये तो हमारा हमेशा अनुभव बताते हैं कि जीव को ऐसा भ्रम है, काम पूरा करना यही एक अभिमान है, और फिर इस अभिमान में अच्छाई होगी तो और तीव्र रस आया, और दूसरों का इसमें लक्ष्य हुआ तो और तीव्रता आ गई। ये तो हमारा हमेशा अनुभव है, उसको दिखलाते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं कि जीव को ऐसा भ्रम है कि पर द्रव्यता मैं कर सकता हूँ, पर द्रव्यता अनेक प्रकार है। सोने को जाते वहां तो छोटी मोटी अनेक शरीर की और दूसरे पदार्थों के व्यवहार की जो भी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा कब आता, करता हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं करना पड़ता है, ऐसी परिणति होती है। मेरी विकल्प परिणति हो गई है कि मैं ये सब कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ इसकी शंका में इस वक्त नहीं जाती। हाँ, स्वाध्याय करते वक्त बराबर विचार करते हैं कि आत्मा शरीर का नहीं कर सकता, कर्म का नहीं कर सकता, नौ कर्म का नहीं कर सकता, भाव कर्म का नहीं कर सकता, समझ कर ना ले, जल कर्म भाव कर्म नौ कर्म से आत्मा भिन्न है, पहले कवित आया नमस्म सारा ये सारा से मिलता है, जल कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न है। स्वाध्याय करते वक्त विचार अवश्य करते हैं, लेकिन परिणाम करते वक्त शंका भी उड़ती है क्या कि मैं कर सकता हूँ क्या, मैं नहीं कर सकता। तो इस भ्रम के कारण सहज परिणति हो गई है कि मैं परद्रव्यता कर सकता हूँ और करता हूँ। पूछ लेना, देख लेना अपने आप को, ये बात तो एक व्यक्तिगत हमें तो हमारी देख ली, दूसरों की अपने आप को देखना पड़ेगा कि क्या स्वाध्याय करते वक्त हमें शंका पड़ता है, ये बोलते वक्त हमको शंका पड़ता है कि मैं बोल सकता नहीं हूँ क्या, क्या सुनता हूँ तो मैं सुनने का कार्य मैंने किया, बराबर अपने कानों कान से सुना है कि ये शब्द का प्रयोग हो रहा है। कान का सहारा ले लीजिए, आधार ले लीजिए, उसी विषय में बैठा हूं देखे सन्ना फिरता फिरता नहीं है, फिराता हूं मैं, पाता है मैं तो फिरता है, लेकिन मैंने फिराया, मैं बैठा, मैंने देखा। ये परब्रह्म का मैं स्वयं गुण परब्रह्म को मैं कर सकता हूँ, ये अनुभव की चीज हो गई है। और ये अनुभव में बहुत बड़ी भूल है कि जिस भूल का फल परिभ्रमण है, अनंत परिभ्रमण है। भूल मामूली है, ऐसे गौम करने लायक ऐसी भूल ये नहीं है। ये विख्यात रूपी भूल है, ब्रह्म की ये भूल है। इसमें सारे परमात्मा चैतन्य तत्व निज आत्मा उसका अनादर है। अपना स्वयं साक्षात सिद्ध पद का इसमें अनादर है, अस्वीकार है, निषेध है, नकार है कि ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये क्रिया चाहिए जिसको मैं कर सकता हूँ। इसके फल में परिभ्रमण है। यहाँ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, परंतु स्वयं पर पदार्थ में कुछ भी नहीं कर सकता। पर पदार्थ की एक भी क्रिया मैं नहीं कर सकता, इसका हमें प्रयोग करना है, मात्र विचार करना है। यह प्रकरण यहाँ नहीं है। अभ्यास जो प्रयोग किया है माता जी ने, इससे यहाँ मात्र विचार का विषय नहीं है, ये प्रयोग का विषय है। ये बात सही है। तो मेरे परंतु मैं स्वयं पर पदार्थ को मैं कुछ नहीं कर सकता, इस बात के अनुभव में की गहराई में हमें जाना है। पर पदार्थ शरीर आदि आत्मा से भिन्न है, ये बात बोलने में और विचार करने में भले ही आसान हो गई है, किंतु अनुभव में कठिन न उतर जाए ऐसी बात है। बोलने में या विचारने में विकल्प में भले ही आसान लगते हो, ऐसे नहीं माता जी ने ऐसी बात क्या किया, तुम्हें पद्धति का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये बात तो हमको तो बहुत आसान हो गई है। अपने लोग भी बोल जाते हैं ये तो हमको कंफर्ट हो गई है बात, ये तो आसान है, ऐसा बोले नहीं हो, ऐसा भी बोल देते हैं तो बात क्यों लगे, ऐसा भी बोल देते हैं तो माँ तो पक्के चले जाती है, कभी नहीं हो जाता है। लेकिन स्थूल हो या सूक्ष्म हो, जैसी है वैसी है, ये तो सापेक्ष बात है। कुछ भी छोटी मोटी विशेषण लगावे तो उसमें तो सापेक्षता अवश्य होती है, लेकिन है ऐसी तो है। अब तो सिद्ध कर तो धन्यवाद है, नमस्कार है, वंदन है। अगर सिद्ध नहीं किया तो बोलने से तो क्या है, विचार करने से मतलब क्या रखा है, ये तो कोई चीज ही नहीं। भिन्न होने में जो पुरुषार्थ है उसमें तो फिर आता है, पुरुषार्थ में तो सुना आता है। इसी में जी लिखते हैं 26 के पत्र में, ऐसा उदय चला है, ऐसा उदय चला है हमको कि घर पे मस्तक रखना मुश्किल हो गया, हो जाता है कभी कभी। भले ही हमारे आत्मा संचित नहीं होते हैं, पुरुषार्थ हमारा बराबर चलता है और विस्मरण स्वरूप का कभी होता नहीं कि मैं जायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, कभी स्मरण नहीं होता। किंतु कभी कभी तो प्रश्न डाल जाता है, ऐसा तो देखा है, कभी कभी तो प्रस्तुत आ जाता है, कठिन आ जाता है। मतलब के ऐसे इस संसार के चित्र विचित्र होने में स्वरूप में स्थिर रहना अच्युत रूप से बहुत कठिन लगता है, बहुत पुरुषार्थमूलक परिस्थिति हो गई है। अभी तो इससे कुछ छुटकारा हो जाता पड़ता है, उदय से कोई निवृत्ति आ जाए प्रवृत्ति इतनी नहीं रह पड़ता। बहुत संतारे हुए हैं अपने 26 साल की उम्र में, जो आजकल तो लड़का देखे 26 साल का हो गया। ऐसे पुरुषार्थ से बहुत जबरदस्त स्थिति थी उनकी, तो यहाँ कहते हैं कि पर पदार्थ ये कुछ नहीं कर सकता, प्रसंग प्रसंग उदय उदय पर इसका पुरुषार्थ और प्रयोग चले तो पता चले कि हमारा प्रयोग चलता है तो कैसा चलता है, या चलने का विचार चलता है लेकिन प्रयोग नहीं चलता है। वह भाग परिस्थिति ये देखने में आती है कि समझने बात आती है कि प्रयोग करना चाहिए लेकिन प्रयोग चलता नहीं है, करीब करीब से ये परिस्थिति। तो ये बात को सूक्ष्म में समझ में आए कि प्रयोग करना चाहिए लेकिन प्रयोग होना, इसके पीछे भावना का बल हुए बिना प्रयोग करने। माता जी के मनुष्यों की भूमिका की नींद की कोई बात है तो ये है कि कोई अपूर्व भावना होवे, चैतन्य की प्राप्ति की कोई अपूर्व भावना हो तो प्रयोग चले तो फिर ज्ञान का प्रयास चले, वरना भेद ज्ञान करना चाहिए ये बात करना चाहिए ऐसे विकल्प तक रह जाएगी, प्रयोग चलेगा ही नहीं, शुरू होगा ही नहीं। ये अपूर्व देन है खुद माता जी की, भावना में तो आया है, सुनने को आता है, सुनने को बैठता है और सब निवृत्ति लेकर के, ये तो निवृत्ति क्षेत्र है, यहाँ तो कोई प्रवृत्ति है सब, जो भी सारा दिन चलता है लेकिन इसलिए भावना में आ गया है ऐसा मत समझ लेना। भावना की उपस्थिति है, भावना चालू हुई है और रही है, इसका कोई लक्षण है क्या? इसका लक्षण है प्रयोग चालू हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रयोग चालू ही नहीं हुआ हमें समझना चाहिए कि हमें भावना ही अभी तक नहीं हुई। आगे की तो बात को विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं। अगर हमें भावना नहीं है और हम अपेक्षा रखे कि हमको समय दर्शन हो जाए तो हमारा समय प्राप्त इतनी देर पड़ा, बहुत पार पड़ा। समय दर्शन पाने का अनन्य ग्रंथ है आचार्य महाराज का, लेकिन भावना का तो हमारा ठिकाना नहीं होंगे और समय दर्शन की हम आशा रखें, अगर आशा रखें तो हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, ये परिस्थिति आ जाएगी। तो ये बात चलती है, ये सब परिणाम के सापेक्ष चलती है। तो इस ग्रंथ के कोई मूल नींद की बात है और बहुत अपनी प्रतीति से और अपने विश्वास से अप्रतिम विश्वास से ये बात कही 21 नंबर से बोल। तो ये भावना कोई ऐसी चीज है कि 14 ब्रह्मांड को हिला देवे तो फिर सकता है भावना का फल नहीं आ गया, ऐसा तो बन ही नहीं सकता। मतलब ये है कि के हमारी मुख्य प्रकृति ज्ञान प्रधान है, स्वाध्याय करना, सुनना, तत्व करना। इस ज्ञान प्रधान प्रवृत्ति में भावना पूर्वक होवे तो कभी सुष्टता नहीं आएगी, बिना भावना से सुष्टता आए बिना रहेगी नहीं। क्यों? सुष्टता रस के अभाव को सूचित करती है, पर भावना एक रस से जी देते हुए परिणाम है। तो जो रस से भीगी हुई परिणति है, परिणाम की कल्पना है, उसके साथ पुरुषार्थ का पैदा होना, पुरुषार्थ का उत्पन्न होना अनिवार्य है, और बिना भावना आगे चलने की कोई बात ही नहीं है। कितना भी बाह्य क्रिया कर करके हम मर जाए, कुछ होने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी देर हमें मिली है। मैं कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह स्वतंत्र है। जब पर पदार्थ की क्रिया का विषय चला तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यहां से ये बात भी कि प्रत्येक ग्रह स्वतंत्र है। स्वतंत्र में स्वयं परिणमित हो ही रहा है, ऐसा एक अनुभव करने का प्रयास होना चाहिए के लिए स्वतंत्र हो रहा है। कुदरत जैसे अपना काम कर ही रही है, ये बारिश थोड़ी भी आई ये अंकुर जमीन में पैदा हो जाते हैं, बिना बीज हुए कुदरती काम होता है कि नहीं? कुदरत तो काम कर ही रही। परमाणु परमाणु मात्र स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव के एक एक पर्याय स्वतंत्र है। किसको हम करें, किसको फिरावे, क्या करें, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, इसलिए हमारा हस्तक्षेप किसी के भी, किसी जीव और कुंडल के परिणाम में हमारा हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और स्वयं मैंने अपना मैं तो स्वयं मैंने मैं तो बिना आत्मा को बनाता है, आत्मा स्वयं को बनाता है, मैं तो बनाता हूँ, मैं तो विनायक हूँ, सिवा जानना मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा भी एक न्याय से जीव के परिणाम होते हुए भी मैं तो विनायक हूँ इसलिए नहीं कर सकता। यहाँ तक ये बात नहीं है पर पदार्थ से लेकर के, पर पदार्थ की बात तो आसानी से समझ में आती है, लेकिन अनुभव करने में तो यहां भी सूक्ष्मता है। तो राग से भिन्न होना, ये तो राग और ज्ञान की जो संधि है जिसको सांब गई समय सार 294 था मोक्ष का, और इस ग्रंथ में 197 का बोल है। राग और ज्ञान जुदा है, यहाँ की बात कही है 197। प्रज्ञा चूर्ण का जो अधिकार चला है, उपयोग को बराबर सूक्ष्म करके सुभाषु भाव और ज्ञान की अंतर संधि में पटकना, दोनों की संधि में सावधान होकर उसका प्रहार करना। अब बात यह है कि संधि दुखे तब तो प्रहार करे ना, जब संधि में दिखती है तो प्रहार कहां करे? अंतर में विचार करें, देखने को जावे तो पता चले कि जहां तक हमारे परिणाम क्रियाकार ज्ञान में यानी विशेष ज्ञानाकारों में आविर्भूत हुए हैं, तन्मय हो रहे हैं, वहां तक ज्ञान और राग की संधि दिखने में नहीं आई। ज्ञान और राग की संधि जब दिखने में नहीं आती है तो प्रहार करने तो आगे की बात कह दी। किस हालत में यह संधि दिखने में आती है, दिखने को हम समर्थ हो सकते हैं, ये तो पहला विचार करना पड़ता है। तो यहां कहते हैं कि हम तो नायक हैं, स्वयं नायक है, ज्ञान मात्र में हूं, इस भाव में अगर हम ज्ञान के वेदक तत्व संवेदनात् प्रसिद्धि ये ऐसा लिया है, ज्ञान में रहे ज्ञान वेदन तक, ज्ञान सामान्य तक पहुंच सकते हैं, तो राग की संधि और निसंधि के विषय में कुछ विषय नजर आता है। जब ये विषय नजर में आता है तो वैज्ञान आगे होकर के भिन्न हो जाना, शुद्धोग्य होना, ये बात तो आगे की बहुत तीव्र पुरुषार्थ की रही। अब तो जहां पुरुषार्थ चालू है भेद ज्ञान का, वहां राग और ज्ञान की संधि देखने में आवे तो प्रज्ञा क्षण का कार्य होवे, देखने में नहीं आवे तो प्रज्ञा क्षण भी नहीं है, मारने का तो सवाल ही नहीं है। परिस्थिति रही है, कहते हैं कि मैं स्वयं जाता हूं ज्ञान हूं, पर पदार्थ में उसका ज्ञान जाता नहीं है और पर मैं से कुछ आता नहीं है, ये प्रयोग में व्याप्त व्यापकता का एक तेज आता है। क्या कहा कि पर पदार्थ में उसका न्याय तत्व का ज्ञान जाता नहीं, न पर पदार्थ में से कुछ आता भी है, आना जाना कुछ होता ही नहीं, जैसे ये आवाज हमारे लिए नहीं आती, आवाज आत्मा में नहीं आती, ज्ञान में नहीं आती, आवाज और ज्ञान भिन्न रहता है। हमारे में आवाज आ गई और हमको ये एकाग्रता हमारी टूट गई, कभी बारिश काल हो जाती है तो बारिश का आवाज हो जाता है बरसात का, लेकिन हमको ये प्रतिकूलता सुनने में आ गई, तो क्या ये आवाज आत्मा में आई या आवाज आवाज में आई है? व्याप्त व्यापकता का अभाव है, कर्ता कर्मपना भी व्याप्त व्यापकता के साथ अविनाभावी है। व्याप्त व्यापकता महसूस हुई कि कर्तापना हमें हो ही जाएगा, रोक सके ये सवाल पैदा नहीं होगा। व्याप्त व्यापकता नहीं है, किसी भी पर पदार्थ की क्रिया भले ही आत्मा के निमित्त के परिणाम के निमित्त से राग के निमित्त से या ज्ञान के निमित्त से हो, किंतु व्याप्त व्यापकता का अभाव है। ये व्याप्त व्यापकता अपनी ज्ञान की व्यापकता तक सीमित है, अपनी व्याप्त व्यापकता अपनी ज्ञान से सीमित होती है, इसकी सीमा राग में भी नहीं तो राग के विषय कुछ पदार्थ में तो सवाल पैदा नहीं होता। इस व्याप्त व्यापकता को हम देखें, इसका हमें अवलोकन हो अंदर में ज्ञान में, तो हमें पर पदार्थ से हमारी व्याप्त व्यापकता नहीं है इसका पता चलेगा, वरना तो न्याय से शास्त्र से युक्ति से समझ ले और संतोष कर ले तो ये संतोष कमाने की परिस्थिति नहीं है, इसमें संकेत होने लायक नहीं है। एक और भ्रम पैदा हो जाएगा तो मुझे समझ में आता है, मैं समझता हूँ, पहले नहीं समझता था, अब समझता हूँ। तो ऐसा होता भी है कि पहले तो समझ में नहीं भी आता था, इसे समझ में आया भी है, लेकिन ये समझ में आया है फिर भी व्याप्त व्यापकता का बाध नहीं होता है, बाधित नहीं होती है, हमारी व्यापकता हमारे ज्ञान में समाप्त हो जाती है, ऐसा बाधित नहीं होता है। वहां तक ये समझ कुछ अच्छा रह गई है, मैंने ये परलक्षित ज्ञान का एक विषय रह गया है, व्यापकता में आवे तो इसके लक्षित ज्ञान का एक विषय होता है। यहाँ से ज्ञान की एक प्रकार की परिस्थिति पलटा आती है। एक बात बहुत सीखी शादी है लेकिन गहराई बहुत है इसमें, पर पदार्थ में ज्ञान जाता नहीं और पर में से कुछ आता नहीं। जैसे कोई चीज हमने गंवा दी, कुछ जेवर गुम हो गया, पैसे हमारे गुम हो गए या कुछ भी हो गया, दुख हो जाता है तो हमारी चीज के लिए कुछ चुरा गए, ज्ञान में से क्या गया, ज्ञान में से कुछ गया नहीं, ये विचार कामयाब कब होगा, ये परिणाम कामयाब कब होगा, तो व्यापकता को ग्रहण करेंगे तब। व्यापकता में अस्तित्व का ग्रहण है पर विचार में नहीं है, ये परलक्ष विचार में संभवित है, हम संगत कर ले गए तो पर में से कुछ आता नहीं, पर में हमारा ज्ञान जाता नहीं, लेकिन ये विचार बेकार जाता है, ये हमारा अनुभव बोलता है कि ये विचार बेकार जाता है, इसका कोई फल नहीं है हमारे पास, तो उसको सही भाव में चरितार्थ करे तो हमें इसकी व्यापकता में जाना पड़ेगा, तो इसका इस व्यापकता का हम अनुभव करे कि हमारे में से क्या गया। अगर हम हर्षित हो गए कुछ प्रश्न से तो हमारे में क्या आया, हमारे में ज्ञान में क्या आया, ज्ञान में से क्या गया, तलाश करो, कम से कम तलाश करो, उतने हद तक तो लाओ। ये हर्ष और शोक का रस मंद हुए बिना रहेगा, रस पीतेगा। ये जो पहचान का विषय आप पर चला है, निर्णय का विषय है, पर निर्णय तब आएगा कैसे वर्ष विभाव का ऐसे प्रयोग कर करके मंद क्या होगा, तब ऐसे हरक शोक आदि जितने भी विभाव परिणाम में जो रस का मुद्दा है, ये रस का मुद्दा यही पात्रता का एक परिस्थिति है जो 19 नंबर के बोल में यहां दिया है, 144 व्याख्यान में से जो चंद्र मैंने खींचा है, 19 नंबर का बोल कुछ बैंक के 24 साल प्रवचन साल में से 19 नंबर का बोल खींचा है, जो हमने शताब्दी अंक में जो प्रवचन डाला है उसमें ये है सारा का सारा। निर्णय बात गुरुदेव बोले कि ऐसा निर्णय ही पात्रता है, तो पहचान को या निर्णय को या लक्ष्य हुआ को या भाववाचन हुआ को, तो इसमें रसमंद होता है, और रसमंद कब होता है कि ऐसे प्रयोग की पद्धति के बिना कभी